नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती है। शहीद आजम भगत सिंह जी की 116वीं जयंती में एक महान क्रांतिकारी जननायक थे, जिन्होंने अंग्रेजों की दासता से देश को मुक्ति हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर तक कर दिया था। उन्होंने देश के युवाओं में आजादी के सपनों को जगाया। ऐसे महान नायक भगत सिंह, उन्होंने आजादी के लिए अपने जीवन का प्रथम व अंतिम उद्देश्य केवल आजादी ही रखा था। आज हमारे साथ गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अमित सरगेवे हुए। सर, मोबाइल में स्वागत करता।
नमस्कार योगेश भाई, नमस्कार।
सर, शहीद आजम भगत सिंह जी की 116वीं जयंती पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
शहीद आजम भगत सिंह की जो आज जयंती हम लोग मना रहे हैं, आज देखा जा रहा है कि देश के अंदर जन जागरूकता जगी है। आज देश में कई जगह बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं और उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश के लिए यही संदेश होना चाहिए कि हम लोग शहीद आजम भगत सिंह की तरह हमेशा अपने देश की सेवा करने के लिए तैयार रहे। और आज जिन संकीर्णताओं में नौजवान फंस रहा है, उस संकीर्णताओं का त्याग करें, क्योंकि भगत सिंह ने उस समय कहा था कि विद्यार्थी और नौजवानों को राजनीति में जमकर हिस्सेदारी करनी चाहिए, क्योंकि यह बदलाव का साधन होता है। आज देखा जा रहा है कि अभिभावक से लेकर के नौजवान विद्यार्थी सभी लोग एक ही रट लगा करके रह रहे हैं कि हमें नौकरी करना है, परंतु अगर सब लोग नौकरी में चले जाएंगे तो शहीद आजम भगत सिंह के सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता है। आज जरूरत है कि हमारी देश की जो संस्थाएं हैं उनको आजाद कराते हुए, उनको मुक्त कराते हुए, जो नाना प्रकार के बंदिशों में जकड़ी हुई है उनको मुक्त करा करके एक सच्चाई का वातावरण को निर्माण किया जाए। और उसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका किसी की होगी तो हिंदुस्तान के विद्यार्थी, हिंदुस्तान के नौजवान और हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों की है। तो विद्यार्थी और नौजवानों को तो चाहिए कि हमेशा भगत सिंह की एक किताब अपने साथ लेकर के चले, उसको पढ़े और यह पढ़े कि भगत सिंह के नीतियों के माध्यम से किस प्रकार से तानाशाही सरकार और तानाशाही व्यवस्था को रोका जा सकता है, उखाड़ करके फेंका जा सकता है।
जी सर, सर भगत सिंह जी के विचार और आदर्श आज के युवाओं के लिए किस तरह प्रेरणादायी हो सकते हैं, और युवाओं के विचारों पर या भगत सिंह के विचारों पर युवा किस तरीके से अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं?
भगत सिंह के अगर विचारों को बहुत गहराई से पढ़ा जाए योगेश भाई, तो सबसे जो मूल बात निकल के आती है कि भगत सिंह चाहते थे कि समाज के अंदर समता की स्थापना हो। वह समाज से नाना प्रकार के जो उस समय विद्यमान भेदभाव थे उसको समाप्त कर देना चाहते थे। वह असमानता को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते थे और इसलिए उन्होंने अपनी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था के तरफ मोड़ने का प्रयास किया, हिंदुस्तान रिपब्लिक समाजवादी एसोसिएशन बना करके। और उन्होंने यह सपना देखा था कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हिंदुस्तान के अंदर सभी लोगों के चेहरे पर खुशहाली होगी, सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगी, कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेगा और जो हमारे देश के अंदर व्यवस्था होगी उन व्यवस्थाओं पर सभी का अधिकार होगा। तो इससे बड़ा सपना तो कोई हो ही नहीं सकता। नौजवानों को तो चाहिए कि वो जो सपना देख रहे उस सपने के साथ साथ भगत सिंह के विचारों का भी सपना देखे कि ठीक है, हमें सब कुछ करना है लेकिन समाज से विषमता समाप्त करना है, समाज में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें शोषण न हो, समाज में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें अन्याय न हो, समाज में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें एक स्वतंत्र नौजवान, स्वतंत्र नागरिक पैदा हो, गुलाम नागरिक न पैदा हो। आज देखा जा रहा है कि भगत सिंह की तस्वीर और भगत सिंह के फोटो लगाने वाले राजनीतिक दल भी नौजवानों को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे, उनके स्वतंत्रता को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। और भारत के अंदर बड़ी विडंबनी स्थिति पैदा हो गई है कि यहाँ के नौजवानों को समझने का प्रयास सरकार नहीं कर रही है। इसलिए नौजवानों को खुद आगे आकर के यह कहना होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, क्योंकि आज जो भारत की व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं तानाशाही और कातिल व्यक्तियों के हाथ में जाकर के सिकुड़ रही है। तो उस कातिल व्यवस्था को उखाड़ करके फेंकना है तो नौजवानों को भगत सिंह के सपनों में अपने सपनों को ढूंढना चाहिए।
जी सर, भगत सिंह पूरी दुनिया में न्याय और समानता देखना चाहते थे, सर
बिल्कुल,
कितना सफल हो पाए सर?
आज ठीक है थोड़ी सी धूमिल दिखाई दे रही है, परंतु आज दुनिया के लक्ष्य को देखिए तो दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे दुनिया की कोई भी संविधान हो, दुनिया का कोई भी व्यवस्था हो, वह न्याय और समता के आधार पर ही खड़ा होता है। जब हमारे देश की कोई भी राजनीतिक दल वोट मांगने जाते हैं आम लोगों से, तो वह यही कहते हैं कि न्याय और समता की स्थापना करेंगे। बेशक वो सत्ता में आने के बाद न्याय और समता को भूल जाते हैं, तो इससे प्रतीक तो हो रहा है कि दुनिया के अंदर न्याय और समता की मांग बढ़ रही है। जरूरत इस बात की है योगेश भाई कि हमारे यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग, मीडिया के लोग, पत्रकार साथी, चिंतक, लिखने वाले, साहित्यकार, व्यवस्था को समझने वाले और विशेष करके राजनेता अपने विचारों में सुधार करें, अपने आप को गुलाम न बनाएं, अपने आप को स्वतंत्र होकर के काम करें। और दूसरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा योगेश भाई कि न्याय और समता की अगर स्थापना करना है तो आपको जो चुनाव में हिस्सेदारी आप कर रहे, आप हारने के लिए चुनाव में हिस्सेदारी करिए। अगर आप जीतने के लिए चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे तो आप न्याय और समता की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि आज आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में जहां 80% लोगों को केंद्र की सरकार 5 किलो अनाज देकर के जिंदा रखने का प्रयास कर रही है, वही हिंदुस्तान के संसद में सबसे ज्यादा अमीर लोग पहुंच गए हैं। एक प्रकार से हिंदुस्तान की संसद अमीरों की बन गई है और देश गरीबों का बन गया है। अगर भगत सिंह के सपनों को पूरा करना है तो संसद गरीबों की बननी चाहिए और देश अमीरों की बननी चाहिए, तब जा करके वास्तविक न्याय और समता की स्थापना हो सकती है।
जी सर, सर भगत सिंह जी का समाजवाद और मार्क्सवाद की कितनी प्रासंगिकता देखते हैं सर?
मार्क्सवाद की आज बहुत बड़ी प्रासंगिकता नहीं रह गई योगेश भाई। मार्क्सवाद ने एक प्रकार से पेट के भूख को समझने का प्रयास किए उन्होंने, लेकिन क्या क्या समाज के अंदर विषमता है उसको समाप्त करने का उन्होंने पूर्णतः रास्ता नहीं बतलाया है। और अगर आपको समाजवाद का दर्शन करना है, समाजवाद को देखना है, तो भगत सिंह का जो समाजवाद था वो समता की स्थापना करने का समाजवाद था। भगत सिंह ने एक जगह लिखा भी है कि पिस्तौल और बम से क्रांति नहीं आ सकती है, यह कुछ देर के लिए साधन हो सकते हैं, परंतु अनवरत अगर आपको समाजवाद की स्थापना करना है तो आपको अहिंसा के रास्ते में जा करके देखना होगा। अगर समाजवाद लाना है योगेश भाई तो आप गांधी के रास्ते को जाइए। अगर समाजवाद का दर्शन करना है तो आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के दर्शन को देखिए। और दुनिया में अगर समाजवाद का सबसे बड़ा उदाहरण देखना है आपको तो जो हमारा सूर्य निकलते हैं इनको आप देख लीजिए कि सूर्य जब पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबते हैं तो सबको एक समान मात्रा में प्रकाश देते हुए चले जाते हैं। नदियों को देख लीजिए, वो एक समान मात्रा में सबको जल देती हुई चली जाती है, वो किसी प्रकार की जातिगत विभेदता नहीं करती है। तो उस विभेदताओं को समाप्त करने की आज आवश्यकता है, और उस विभेदताओं को अगर समाप्त करना है तो समाजवाद ही एक रास्ता है। वो भगत सिंह का विचार है, वो लोहिया का विचार है, वो गांधी का विचार है, उस पर चलकर ही विकास किया जा सकता है। और भारत के अंदर मार्क्सवाद को लागू करके समाजवाद नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि यह मुल्क विषमताओं से भरा हुआ मुल्क है। यहाँ पे नाना प्रकार की संस्कृति, नाना प्रकार की सभ्यता, नाना प्रकार के रहने वाले लोग है। अगर इसको समझना है तो हमें गांधी के दर्शन में देखना होगा, हिमालय के पाटिकाओं में देखना होगा, गंगा के पाटिकाओं में देखना होगा, खेत और खलिहान में जाकर के देखना होगा, तब हम हिंदुस्तान की व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था के तरफ ले जा सकते हैं और भगत सिंह के सपनों को साकार कर सकते हैं।
जी, तो ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर अपने विचार साझा किए। दो पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे। मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए, और जब जगू और मरु तो तिरंगा ही कफन चाहिए। सर मोबाइल को समझिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई, आपको भी धन्यवाद कि आज आपने भगत सिंह को याद किया और भगत सिंह के ऊपर खुली चर्चा करा रहे हैं, जिसकी आज समाज में नितांत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त की होगी। धन्यवाद।